नमस्कार भारत 28 अगस्त दिन शुक्रवार, मैं अशोक कुमार। लीबिया के तट के पास दो नौकाएं पलटी, सैकड़ों प्रवासियों के मारे जाने की आशंका। जर्मन चांसलर ने कहा, प्रवासियों की हर संभव मदद करनी होगी।
Aber aus unserer eigenen historischen Erfahrung ist es auch wichtig, den Menschen.
ओडिशा के एक अस्पताल में हफ्ते भर के भीतर 35 बच्चों की मौत से खलबली। जानेंगे गुजरात के हाल और चलेंगे हिंसा का शिकार बने नीलेश भाई पटेल के घर भी।
डिमांड कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए कि ये किसने किया और पुलिस ने किया है तो वो किस पुलिस ने किया है वो उसको पकड़ कर लाइए और हमें मेरे पापा को इंसाफ दीजिए।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, खबरें और भी, लेकिन सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। लीबिया के जुबारा बंदरगाह पर प्रवासियों से भरी दो नाव डूब गईं। इन दो नावों में 500 के करीब लोग सवार थे। बचाव और राहत अभियान के तहत 21 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं जिनकी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। एक अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 100 शव जुवारा अस्पताल ले जाए गए हैं। ऑस्ट्रिया में हंगरी की सीमा के पास एक लॉरी में कई शव मिले हैं जिन्हें अधिकारी प्रवासियों के शव मान रहे हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या 20 से 50 के बीच बताई गई है। ऑस्ट्रिया की पुलिस के मुताबिक मृतकों की सही पहचान के बारे में शुक्रवार से पहले जानकारी नहीं मिल सकेगी। पुलिस का अनुमान है कि लॉरी में सवार लोगों की 2 दिन पहले मौत हुई। ये लॉरी हंगरी से आई थी। अमेरिका में आए कटरीना तूफान से हुई तबाही के 10 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न्यू ऑरलियंस के लोगों के जज्बे की तारीफ की है। ओबामा ने कहा कि प्राकृतिक हादसे से शुरू हुई दिक्कतें मानव निर्मित हादसे में तब्दील हो गई। ऐसे वक्त में सरकार अपने लोगों का ध्यान रख पाने में नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि उसके बाद अमेरिकी सरकार, राज्य सरकार और लोगों के मिले जुले प्रयास से समाज को नया जीवन मिला। ओबामा ने कहा,
I'm here to say, I'm here to hold up a mirror and say, because of you,
मैं यहाँ आईना थामे ये कहने आया हूँ कि आप न्यू ऑरलियंस के लोगों के साथ काम करने की वजह से ये शहर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे इससे पहले कभी इतना भरोसा नहीं था कि एक साथ हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। आप मुझे प्रेरणा देते हैं, आपकी कोशिशें मुझे प्रेरित करती हैं। मुझे पूरे शहर में इसके सबूत मिल रहे हैं कि आने वाले कल को हम बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट में शामिल एक ब्रितानी चरमपंथी की सीरिया में हुए हवाई हमलों में मौत हो गई है। जुनैद हुसैन नाम के इस चरमपंथी का काम इस्लामिक स्टेट की सोशल मीडिया मुहिम चलाना था। बताया जाता है कि संगठन में विदेशी लड़ाकों को भर्ती कराने में भी हुसैन की अहम भूमिका थी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख माइकल मैककॉल ने कहा कि हुसैन एक अहम साइबर जिहादी थे। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले शुक्रवार को वाशिंगटन में सऊदी शाह सलमान से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश एर्नेस ने बताया कि 4 सितंबर को होने वाली इस मुलाकात में सीरिया, यमन और मध्य पूर्व में ईरान की गतिविधियों पर चर्चा होगी। BBC समाचार।
इस समय आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा का कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और उसकी मोबाइल वेबसाइट के जरिए अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम में बात करते हैं सबसे पहले उन हजारों लोगों की जो निकलते तो बेहतर जिंदगी की आस लेकर हैं, लेकिन समा जाते हैं मौत के आगोश में। कल देर रात खबर आई कि लीबिया के तट के पास प्रवासियों को लेकर जा रही दो नौकाएं फिर पलट गईं, जिन पर लगभग 500 लोग सवार थे। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। लगभग 20 लोग बचा लिए गए हैं, लेकिन सैकड़ों लापता हैं और उनके जीवित बचे होने की संभावना अब लगभग नहीं है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वात्सल्य राय से।
लीबिया के तट पर प्रवासियों को ले जा रही दो नाव पलट गईं। लीबिया के जुबारा बंदरगाह के करीब हुए इस हादसे में नाव में सवार सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हादसे का शिकार बनी पहली नाव में करीब 50 लोग सवार थे। इस नाव ने गुरुवार को मदद के लिए संदेश भेजा था। दूसरी नाव बाद में डूबी, उसमें करीब 400 यात्री सवार थे। हादसे के बाद लीबिया के कोस्ट गार्ड ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया और 21 लोगों को बचा लिया, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। त्रिपोली के पश्चिम में स्थित जुवारा के एक निवासी ने बीबीसी को बताया कि कम से कम 100 शवों को अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय व्यक्ति से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नावों में सीरिया, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों के नागरिक सवार थे, हालांकि इस जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल समुद्र के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश में करीब 2400 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप की तरफ बड़ी संख्या में प्रवासियों का पलायन एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है, लेकिन जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल का कहना है कि यूरोप को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अपने अनुभवों से सबक लेते हुए ये जरूरी है कि जरूरतमंद लोगों को शरण दी जाए, चाहे वो कहीं से भी आए हों। सभी जानते हैं कि सीरिया में कैसे हालात हैं, और सभी ये भी जानते हैं कि सीरिया के पड़ोसी देश किस तरह का बोझ सह रहे हैं। ऐसे में अब ये यूरोप पर है कि वो मदद के लिए आगे बढ़े। यूरोप अपनी तमाम समस्याओं का एकजुटता के साथ समाधान करने में कामयाब हुआ, अब पूरी दुनिया हमें देख रही है। ये थे मर्केल के शब्द। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में हंगरी की सीमा के पास एक लॉरी में कई शव मिले, जिन्हें अधिकारी प्रवासियों के शव मान रहे हैं। शुरू में इनकी संख्या 20 से 50 बताई गई, हालांकि पुलिस मृत प्रवासियों की सही संख्या का पता लगाने में जुटी है। ऑस्ट्रिया के बुर्गेनलैंड राज्य के पुलिस प्रमुख हैंस पीटर दोस्कोजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ऐसी जानकारी मिली है कि इस वाहन ने कल सुबह बुडापेस्ट के दक्षिण पूर्व से यात्रा शुरू की। ये वाहन सुबह के करीब ऑस्ट्रिया की सीमा पर पहुंचा और हमारा अनुमान है कि दिन के वक्त ये ऑस्ट्रिया में दाखिल हुआ। ये थे हैंस पीटर के शब्द। मध्य पूर्व के कई देशों में जारी संकट और अस्थिर हालात के बीच सैकड़ों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप का रुख कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है।
बेहतर जिंदगी की भारी कीमत चुकाते प्रवासी लोग। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सारा आपको सुना रहे थे वात्सल्य राय। इससे पहले शनिवार को लीबिया के तट के पास ही नौकाओं से लगभग 4,500 लोगों को बचाया गया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यूरोप की तरफ लोगों के रुख करने की क्या वजह है और इससे वहां के सामाजिक और राजनीतिक हालात किस तरह प्रभावित हो रहे हैं, यही जानने के लिए हमारे साथी विनीत खरे ने बात की जर्मनी के शहर कोलोन में वरिष्ठ पत्रकार राम यादव से।
यूरोप को दुनिया भर में, यूरोप और अमेरिका को दुनिया भर में संपन्न लोगों का देश या क्षेत्र माना जाता है, तो जहाँ कहीं भी दुनिया में लोग बदहाली में है या गृहयुद्ध है, युद्ध है, उनको नौकरी धंधे ठीक से नहीं मिल रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि यूरोप या अमेरिका जाकर वो अपनी जिंदगी, अपना भविष्य सुधार लेंगे, और इस लालच में अगर वो कानूनी ढंग से वीसा वगैरह के साथ इन देशों में नहीं पहुंच पाते हैं तो कोशिश करते हैं अवैध ढंग से, बिना वीसा, बिना पासपोर्ट के, यानी शरणार्थी बनकर, और ये कहते हुए कि हमारे पास कोई कागज कुछ है नहीं, कि हम, क्योंकि हम तो शरण मांगने आए हैं और हमें अपने देश में अत्याचार सहना पड़ता है। तो यूरोप के अधिकांश देशों में, जैसे कि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में करीब करीब संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि जहाँ जो लोग भी ये सिद्ध कर सकते हैं कि उनके ऊपर राजनीतिक अत्याचार हुआ है या हो रहा है, वे यहाँ पर शरण की मांग कर सकते हैं और उनको प्रायः शरण मिलती भी है।
इसको लेकर जो यूरोपीय देश हैं उनमें भी आपस में एक तरह से कश्मकश है कि कुछ देशों का कहना है कि सारा भार हम पर पड़ रहा है और बाकी के देश हैं वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
ये बात किसी हद तक सही है, क्योंकि यूरोपीय संघ में एक नियम है कि जो कोई शरणार्थी यूरोप की बाहरी सीमा के पास जिस किसी देश में पहले पहुंचेगा उसे वही शरण मांगनी होगी। भारी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं तो जो बाहरी सीमा के नजदीक वाले देश हैं, ग्रीस है, इटली हुआ, स्पेन हुआ, ये सब इस समय आर्थिक संकट में हैं। तो ये कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को अपनी छोटी सी इकोनॉमी के बल पर कैसे संभालें, और ये क्योंकि सारा मामला कुछ एक साल तक चल सकता है तो हम इनका खर्च कैसे उठाएं।
ये जो शरणार्थियों के आने से यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप हैं, खासकर जो अमीर देश हैं और अमीर नहीं भी हैं, उनकी आंतरिक राजनीति में, आंतरिक समाज में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है?
ऐसा है कि यूरोप के लोग अब तक अपने आप तक ही सीमित रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इनका पाला विदेशियों से पड़ा है, और यहाँ के लोगों को पहली बात विदेशी लोगों का चेहरा पहचाने में दिक्कत हो रही है। उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन, उनका धर्म वगैरह काफी अलग ढंग का है, और वो चाहते हैं, और इन सरकारों का, इनके संविधानों का नियम भी है कि सबके साथ मानवीयता के आधार पर व्यवहार किया जाए, सबको अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें मस्जिद बनाने दो, हमें पूजा करने, अपने ढंग से पूजा करने दो, अपने तीज त्योहार मनाने दो। कुछ लोग उसमें से शरीयत वगैरह की भी मांग करते हैं कि वो भी हमारे धर्म का हिस्सा है, हमें शरीयत के अनुसार चलने दो। तो उससे एक टकराव पैदा होता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आप शरणार्थी हैं, हम आपके ऊपर एक तरह से कृपा कर रहे हैं कि आपको यहाँ रहने दे रहे हैं, आपका खर्च बच उठा रहे हैं, अब ये नहीं हो सकता कि आपकी और सारी मांगे भी हम एक ही साथ में पूरा करें।
ये थे जर्मनी के शहर कोलोन से वरिष्ठ पत्रकार राम यादव, और उनसे बात कर रहे थे विनीत खरे। और इसके बाद अब रुख करते हैं भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा का, जहां एक अस्पताल में पिछले 7 दिनों में कम से कम 35 नवजात शिशुओं की मौत हो जाने से खलबली मची है। कटक के इस अस्पताल में शिशुओं की मौतों का सिलसिला बीते गुरुवार से जारी है। शिशुओं के परिजनों का कहना है कि इलाज में डॉक्टरों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं। हालांकि अस्पताल इस बात से इनकार करता है। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
चंडीखोल के निवासी अनिरुद्ध साहू की पत्नी ने मंगलवार को जब एक बेटी को जन्म दिया तो वे खुशी से फूले नहीं समाए। पहली बार पिता बने अनिरुद्ध को लगा कि उनके घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी लक्ष्मी इस दुनिया में केवल 2 ही दिनों की मेहमान थी। बृहस्पतिवार के सुबह 9 बजे उनकी बेटी का ऑपरेशन होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ही उनकी नन्ही सी बच्ची इस दुनिया से चल बसी। अनिरुद्ध के मन में कोई संदेह नहीं है कि सही समय पर और सही इलाज मिलने पर उनकी बेटी बच सकती थी। दर्द भरी आवाज में वो कहते हैं,
दुख तो निश्चित तो बहुत कष्ट
दुख तो होगा ही, बच्चे की माँ को संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरी बच्ची तो अब वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी और के साथ ऐसा न हो इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे मामले की एक विस्तृत जांच की जाए। हालांकि इलाज में लापरवाही के आरोप को शिशु भवन के नाम से जाने जाने वाले पूर्वी भारत के इस प्रमुख शिशु अस्पताल के अधिकारी खंडन करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर बच्चों को इस अस्पताल में तभी लाया जाता है जब उनकी हालत काफी गंभीर होती है। इतने कम दिनों में इतने सारे बच्चों की मौत से बौखलाई राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए राज्य के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी DMET की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो 10 दिनों में अपना रिपोर्ट देगी। स्वास्थ्य मंत्री अतनु सब्यसाची नायक बुधवार को शिशु भवन गए और स्थिति की समीक्षा करने के बाद अस्पताल के लिए 10 करोड़ की राशि के अलावा कई अन्य कदमों की घोषणा की, लेकिन विडंबना ये रही कि अगले ही दिन 5 और शिशुओं की मृत्यु हो गई। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर अपने अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक के बाद उन्होंने कहा,
मेडिकल कॉलेज 6 जना डॉक्टर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि,
हमने SCB मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे 6 वरिष्ठ डॉक्टरों को यहां तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 6 वरिष्ठ स्टाफ नर्सों को भी यहां तैनात किया जाएगा। इस समय राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। विरोधी दलों ने इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार को आड़े हाथों लिया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा नेता और विधायक प्रदीप पुरोहित ने कहा,
कौन समीक्षा को ले, कौन तागिद को ले, कौन देखी की असली मुझे जानी नहीं, किंतु
उन्होंने क्या समीक्षा की, किसे क्या हिदायत दी, क्या देखा मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब 5 बच्चों की मौत हुई है, इससे साफ जाहिर है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग शिशु भवन को सुधार नहीं पाएगा। इसलिए नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ते से भी अधिक समय बाकी है, लेकिन अभी से इतना जरूर कहा जा सकता है कि कहीं कोई चूक तो जरूर हुई है। केवल 7 दिनों में 35 बच्चों की मौत महज संजोग कभी नहीं हो सकता। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
गुजरात इन दिनों पटेल आरक्षण आंदोलन की आग में तप रहा है। मंगलवार को पटेल समुदाय की रैली और उसके बाद विभिन्न शहरों में हुई हिंसा में कुल 9 लोग मारे गए। इन्हीं में से एक थे अहमदाबाद के नीलेश भाई पटेल, जिनकी 2 बेटियों के सिर से अब न सिर्फ बाप का साया उठ गया है, बल्कि घर के कमाने वाले सदस्य भी अब नहीं रहे। उनके घर पहुंचे BBC संवाददाता जुबैर अहमद।
पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ अभियान शुरू कर रखा है, लेकिन इन 2 बेटियों का क्या, जिनके पिता मंगलवार को हिंसा का शिकार हो गया। ये उनके भाई हैं, उनका कहना है कि इस परिवार के कमाने वाले वो अकेले ही सज्जन थे। तो आप ये बताइए कि अब इनका भविष्य क्या होगा?
भविष्य रहेगा कहाँ है, भविष्य पूरा धुंधला हो गया है। अब हम हो सके उतनी हम हेल्प करेंगे, लेकिन आगे क्या होगा, सरकार को क्या बोले। हमने हमारा भाई को है, हमारा भाई तो था, उससे पहले 2 बच्चियों का बाप था, तो बच्चियों का कौन, वो हम प्रश्न अग्रा हो गए हैं।
आप बताइए बेटी, आपका नाम क्या है?
वही देवी।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? आपके पिता हिंसा का शिकार हो गए, हिंसा में मारे गए,
पुलिस और सरकार दोनों।
आपको लगता है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है पटेल समुदाय के लिए, रिजर्वेशंस के लिए, वो ठीक है?
यस, वो ठीक है।
क्यों ऐसे समझते हैं?
क्योंकि वो हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और सारा हक वो SC SC BC वाले ले जाते हैं, और हमको एजुकेशन में भी एडमिशन नहीं मिलता और फिर जॉब में भी एडमिशन नहीं मिलता, हमको सब जगह पे हमको
अन्याय
हो रहा है, इसीलिए।
आपका नाम?
मेरा नाम पूजा पटेल है।
आप इनकी बहन है ना?
यस।
आपको किस पे गुस्सा है?
हमें सरकार से और पुलिस वाले से बहुत गुस्से हैं।
आपको क्या लगता है कि अब आपका भविष्य जो है वो मुश्किल में पड़ गया?
हमारा भविष्य बहुत मुश्किल है, हमारी सारी जिम्मेदारी हमारे पिताजी ही लेते थे,
और अब हमारी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? मुझे एक बार PM मोदी से मिलना है।
क्या कहना चाहेंगे?
इसी बारे में मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि अब हमारा भविष्य क्या होगा।
पर PM मोदी तो सारे बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके जो अधिकार।
मैं उनसे ही सवाल करती हूँ कि आप बेटी बचाओ अभियान जो रखते हैं और फिर अब हमारे बारे में सोचो, अब देखो हमारे बारे में, किसी पर होता है ना तब उनको मालूम पड़ता है कि कैसा होता है।
तो आप उनको लिखने वाली हैं चिट्ठी?
मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बस।
चिट्ठी तो कहाँ पहुँचती है?
चिट्ठी कहाँ पर, वहाँ उनके साथ पहुँचती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।
आपको लगता है कि मिलना संभव होगा प्रधानमंत्री से?
जरूर होगा, हम जरूर कोशिश करेंगे, तो जरूर होगा।
आप दोनों जाएंगे?
यस, हम दोनों ही जाएंगे।
आप क्या कहेंगे उनसे?
हम कहेंगे बेटी बचाओ अभियान शुरू किया तो हमारी भी कुछ मदद करो, हमें भी कुछ हक मिलना चाहिए।
आप क्या
इंसाफ चाहिए? डिमांड कुछ नहीं है हमें, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए कि ये किसने किया और पुलिस ने किया है तो वो किस पुलिस ने किया है, वो उसको पकड़ कर लाइए और हमें, मेरे पापा को इंसाफ दीजिए।
तो आनंदी बहन से क्यों नहीं मिलना चाहिए?
आनंदी बहन कुछ कंट्रोल, आनंदी बहन के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है।
आनंदी बहन को बोला हमने, आनंदी बहन जब मीडिया में आके बोलती है कि पब्लिक कंट्रोल करे, वो पुलिस को नहीं बोलती कि आप कंट्रोल करो, पब्लिक को कंट्रोल करने पहले पुलिस को कंट्रोल करो फिर पब्लिक कंट्रोल में होगी। उन्होंने ये सब बिगाड़ा है ना, उन्होंने ऑर्डर दिया होगा तभी वो लोग ने मारना चालू किया है।
तो प्रधानमंत्री से जब आप मिलेंगी, प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि ये तो राज्य सरकार का मामला है,
तो उनकी राय भी लेंगे ना हम?
राज्य भी उनका है,
वो हमारे राज्य के है, उनको तो पता होना चाहिए ना कि इस राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं।
गुजरात में हुई हिंसा में मारे गए अहमदाबाद के नीलेश भाई पटेल के भाई और बेटियों से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। थोड़ी देर पहले मैंने जुबैर अहमद से बात की जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं और उनसे पूछा कि वहां अब किस तरह के हालात हैं।
देखिए, मैं जब कल यहां आया तो काफी ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां पे हिंसा हुई थी और मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं हुआ कि कुछ यहाँ पे हिंसा हुई थी, क्योंकि जो भी गाड़ियां जलाई गई थी या तोड़फोड़ की गई थी वो सब मिटा दिया गया, सब चीजें हटा दी गई हैं। ऐसा लगता है कि शहर में शांति है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां हैं सड़कों पे और दुकानें खुली हुई थी और बाजार भी लगे हुए थे। लगता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा कई इलाकों में हुई थी, लेकिन जब अंदर मोहल्लों में गए, लोगों से बातें की तो काफी लोगों में नाराजगी थी, खासतौर से पुलिस के खिलाफ। कुछ पटेल परिवार और सोसाइटीज में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले आए, खासतौर से रैपिड एक्शन फोर्स के लोग, और उनके घरों में आके उनकी पिटाई की, और कुछ सीसीटीवी के फुटेज भी दिखाए उन्होंने कि देखिए ये छत पे आके मारा है इन्होंने, देखिए ये कमरे के अंदर आके मारा, और हमने फुटेज में देखा भी ऐसा। तो नाराजगी अभी भी है, टेंशन है अभी भी, लेकिन शांति बनी हुई है और अधिकारी कह रहे हैं यही कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि आगे हिंसा की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद कल रात एक छोटी सी घटना घटी जिसमें कुछ लोगों ने एक बस को आग लगा दी, लेकिन फौरन उस पर पुलिस ने काबू पा लिया और वहां पर बात आगे नहीं बढ़ पाई।
कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर सामान्य जिंदगी बहाल हो रही है शहर में। हम बात करना चाहेंगे कि जो पूरा आंदोलन है उसके कुछ नेताओं से जरूर आपकी बात हुई होगी, अब क्या माने कि मुद्दा सुलझने की तरफ जा रहा है?
देखिए, जो हमारी बात हुई है लोगों से वो ये कहते हैं कि हिंसा उनका कोई मकसद भी नहीं था, वो तो शांतिपूर्वक जो है वो आंदोलन कर रहे थे। और जब एक बड़ी रैली हुई मंगलवार को, उस वक्त रैली के बाद तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि हिंसा होगी, लेकिन उनका कहना था कि पुलिस उन पे जोर जबरदस्ती करने लगी, और कुछ जाहिर है जो भीड़भाड़ लोग थे उसमें भी कुछ पुलिस पर हमला किया, पथराव किया, और पुलिस ने फिर लाठी चार्ज किया और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, ऐसा कहना था उनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो शांति हो गई है, लेकिन जो उनकी मांग है कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, मुख्यमंत्री से उन लोगों ने इस तरह का आग्रह किया है, और हाई कोर्ट ने भी सरकार से, राज्य सरकार से पूछा है कि जिस तरह की हिंसा हुई है और पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से की गई, दोनों में कोई बैलेंस नहीं है, पुलिस की कार्रवाई काफी सख्त थी, इसकी क्या वजह है, ये हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है और सरकार को इसका जवाब देना है।
ये थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं और बता रहे थे वहाँ किस तरह के हालात हैं, खासकर पटेल समुदाय का जो आरक्षण के लिए आंदोलन है उसके बाद वहाँ किस तरह के हालात उपजे हैं। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है ये जानने का कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास छपा है। जानकारी के साथ, अखबारों के साथ, अखबारों के पुलिंदे के साथ मेरे साथ मौजूद हैं वात्सल्य राय। वात्सल्य जी, क्या कह रहे हैं अखबार आज के?
जी अशोक जी, आज अखबारों ने जो एक खबर को बड़ी प्रमुखता से जगह दी है वो केंद्र सरकार ने जो 98 स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट जारी की है, तो इसको लेकर द हिंदू ने अपनी हेडलाइन लगाई है कि केंद्र ने 98 स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट जारी की, यूपी और तमिलनाडु सबसे आगे। हिंदुस्तान ने इसी खबर की हेडलाइन लगाई है, देश भर में 98 स्मार्ट सिटी बनेंगी। नई दुनिया की हेडलाइन है, केंद्र सरकार ने खोला स्मार्ट सिटी का पिटारा।
तो कुल मिला के स्मार्ट शहरों की तरफ जो बढ़ते कदम है सरकार के, उसको
अमर उजाला ने दिलचस्प हेडलाइन इसमें लगाई है, एनडीएमसी क्षेत्र में बनेगा स्मार्ट सिटी, राय बरेली पर फंसा पेच। राय बरेली जो सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र है। इसी तरीके से एक खबर और जिसे प्रमुखता से सारे अखबारों में मैं देख रहा हूँ कि जगह मिली है, कश्मीर में पकड़े गए कथित पाकिस्तानी आतंकी की खबर को भी प्रमुखता से जगह मिली है। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन लगाई है, कश्मीर में एक और पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, एक और नावेद। इसी तरीके से बाकी अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वन रैंक वन पेंशन को लीड खबर बनाया है। अखबार का कहना है कि रोलिंग पेंशन एडजस्टमेंट प्लान की वजह से वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू होने में देर हो रही है। वहीं नवभारत टाइम्स ने सेंसेक्स में 517 अंकों की उछाल की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने हेडलाइन लगाई है, सेंसेक्स में साल की दूसरी बड़ी छलांग। इसी तरीके से यूसेन बोल्ट ने जो 200 मीटर की दौड़ जीती है वर्ल्ड एथलेटिक्स में, इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है। कई अखबारों ने छोटे में जगह दी है, कई जगह बड़ी बड़ा स्पेस ऐसे मिला।
ये बताइए कि यूसेन बोल्ट का जो अपना अंदाज है उसका फोटो छपा है अखबार में?
नहीं, कुछ जिन अखबारों ने अंदर के पन्नों पर उस फोटो को जगह दी है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक जो सख्त टिप्पणी आई है कि सड़कें खराब हों तो टोल टैक्स क्यों दें, दैनिक भास्कर ने इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। तो इस तरह की खबरें ये देखने में है, और
यही खबर में आपके सामने अमर उजाला
में भी इस खबर को जगह दी गई है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं कमांडो सुरेंद्र, उनके खिलाफ 4 दिन में चार्जशीट दाखिल करने का जो चार्जशीट पेश किया पुलिस ने, उसकी खबर को भी प्रमुखता से जगह अमर उजाला ने पहले पन्ने पर दी है। इसी तरह से 6 माह में शुरू होगा मानेसर मेट्रिनो पर काम, इस खबर को भी अमर उजाला ने पहले पन्ने पर जगह दी।
IIT रुड़की से जुड़ी खबर मेरे सामने मुझे दिख रही है अखबार में, क्या कहती है?
46 सीटें IIT रुड़की में खाली हैं। इस बार IIT रुड़की को तरजीह नहीं दी है छात्रों ने, ये खबर में बताया गया है। इसी तरीके से गुजरात की स्थिति को भी बताया गया है कि जहां स्थिति काबू में आ गई है और आरक्षण की मांग को लेकर वहां एक हिंसक आंदोलन हुआ था 2 दिन पहले, मतलब हिंसा हो गई थी आंदोलन के दौरान, अब स्थिति शांतिपूर्ण है, इसे भी ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय, अखबारों की सुर्खी आपके लिए हमारे लिए लेकर आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं खेलों की दुनिया की तरफ, जहाँ आज होना है भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अहम टेस्ट मैच शुरू।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने के इरादे से भारतीय टीम आज कोलंबो में तीसरा टेस्ट खेलने उतर रही है। पहला मैच 63 रन से हारने के बाद भारत ने सीरीज का दूसरा टेस्ट 278 रन से जीता था। दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों ने 8 विकेट चटकाए थे, जिसने जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने इसे पिछले कुछ वर्षों में भारतीय गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करार दिया। साथ ही उनका कहना है कि अगर आखिरी टेस्ट में भी भारत यही प्रदर्शन दोहराता है तो सीरीज पर उसका कब्जा होगा।
आई थिंक इट्स द बेस्ट बॉलिंग आई हैव सीन एज अ यूनिट इन अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स।
पिछले कुछ वर्षों में एक यूनिट के तौर पर ये भारत का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। पिछले टेस्ट के दूसरे और तीसरे दिन जब विकेट मिलने मुश्किल थे, उन्होंने अनुशासन बनाए रखा। उनके दबाव बनाए रखने से विकेट गिरने शुरू हुए, जिससे नतीजे पर बड़ा फर्क पड़ा। अगर वो ऐसा ही प्रदर्शन आखिरी मैच में भी कर पाए तो जीतने के अच्छे आसार हैं।
पिछले मैच में नंबर 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा की जगह अजिंक्य रहाणे को उतारा गया था। रोहित पहले टेस्ट की दोनों पारियों में सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए थे। ऐसे में बल्लेबाजी क्रम पर शास्त्री का कहना है,
इन दिस टीम नो वन ओन्स अ बैटिंग पोजीशन एनी पोजीशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटजी एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल।
इस टीम में किसी भी खिलाड़ी का कोई नियमित बल्लेबाजी क्रम नहीं है। बल्लेबाजी क्रम रणनीति पर निर्भर है और कोई भी कहीं भी खेल सकता है। हम विरोधी और हालात को देखकर बल्लेबाजी क्रम तय करेंगे।
बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली की ये पहली पूर्ण टेस्ट सीरीज है। पिछले 22 वर्षों में भारत श्रीलंका में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में भारत की कोशिश इस बार ये कामयाबी हासिल करने की होगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और नमस्कार, भारत में इससे पहले कि आपसे विदा लें, जान लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। लीबिया के जुवारा बंदरगाह पर प्रवासियों से भरी 2 नाव डूब गईं। इन 2 नावों में 500 के करीब लोग सवार थे। बचाव और राहत अभियान के तहत 21 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। ऑस्ट्रिया में हंगरी की सीमा के पास एक लॉरी में कई शव मिले, जिन्हें अधिकारी प्रवासियों के शव मान रहे हैं। अमेरिका में आए कटरीना तूफान से हुई तबाही के 10 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न्यू ऑर्लियंस के लोगों के जज्बे की तारीफ की है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए एक ब्रितानी चरमपंथी की सीरिया में हुए हवाई हमले में मौत हो गई। जुनैद हुसैन नाम के इस चरमपंथी का काम इस्लामिक स्टेट की सोशल मीडिया मुहिम चलाना था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज से कई कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। बीबीसी समाचार।
और इसी के साथ नमस्कार, भारत का समय अब समाप्त होने को है। आपसे मिलेंगे ठीक एक घंटे बाद। कार्यक्रम होगा विश्व भारती। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अशोक कुमार को अनुमति दें। नमस्कार।